नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक के एक अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं।
जी, पुस्तक है महाशक्ति की लोक यात्रा, जिसे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने लिखा है और ब्रह्म वर्चस ने संपादित किया है।
और ये पुस्तक वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के जीवन पर आधारित है, जो गायत्री परिवार की सह संस्थापिका रही।
बिल्कुल, उनके दिव्य जीवन की, जिसे हम कह सकते हैं, एक भावपूर्ण कहानी है ये।
हाँ, और आज हम जिस अध्याय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो है मातृत्व के साथ निभा अलौकिक दाम्पत्य।
ये अध्याय उनके विवाह के बाद आंवलखेड़ा आने और उनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत के बारे में है।
तो चलिए इसी प्रसंग को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आंवलखेड़ा में नववधू के रूप में वंदनीय माता जी का आना, पुस्तक में इसका वर्णन काफी प्रभावशाली है।
जी हाँ, लिखा है कि लाल जरी की साड़ी, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, वे साक्षात जगदम्बा लग रही थी, जैसे देवी पार्वती कैलाश आई हों।
बच्चे उन्हें घेर कर खड़े थे, कौतूहल से देख रहे थे। ये सिर्फ एक पारिवारिक घटना नहीं थी, बल्कि जैसे एक नए अध्याय की शुरुआत थी।
बिल्कुल, और आते ही जो सबसे पहली बात सामने आई वो था उनका सहज मातृत्व। घर में आते ही उनकी भेंट गुरुदेव की पहली पत्नी से जो संतानें थी, दया और ओम प्रकाश, उनसे हुई।
हाँ, दया जी वाला प्रसंग तो बहुत ही मार्मिक है। पुस्तक में लिखा है कि जब दया पास आईं, तो वंदनीय माता जी ने बड़े स्नेह से उनका हाथ थामा।
हाँ, और पास बिठाकर कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी, मुझसे संकोच की कोई जरूरत नहीं है।
सोचिए, सिर्फ एक वाक्य, पर इसने जैसे माँ बेटी के बीच की सारी झिझक मिटा दी। एक अटूट रिश्ता वहीं बन गया।
ये सचमुच अद्भुत है, कितनी सहजता से उन्होंने उस भूमिका को अपना लिया। ये दिखाता है कि उनका मातृत्व सिर्फ जैविक नहीं था।
हाँ, ये बहुत व्यापक करुणामय मातृत्व था।
जी, पुस्तक में तो यहाँ तक लिखा है कि उनके आने से घर का माहौल ही बदल गया है, जैसे पतझड़ में वसंत आ गया हो। हर तरफ एक सुव्यवस्था, एक निखार सा दिखने लगा।
ये केवल बाहरी नहीं, भावनात्मक स्तर पर भी एक सुकून आया होगा।
निश्चय ही, और ओम प्रकाश जी के साथ भी उनका पहला संवाद याद करने लायक है।
हाँ, उसका क्या जिक्र है?
जब ताई जी यानी गुरुदेव की माता जी, उन्होंने ओम प्रकाश जी से चरण स्पर्श करने को कहा, तो वंदनीय माता जी ने बस बड़ी सरलता से उनका नाम पूछा और कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं ये पूछा।
अच्छा।
ओम प्रकाश जी आज भी उस क्षण को याद करते हैं और भावुक हो जाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे माता जी ने उनकी न जाने कितनी बचकानी शरारतों और गलतियों को हमेशा हंसकर माफ कर दिया।
कमाल की क्षमाशीलता और स्नेह था उनमें।
बिल्कुल, ये तो हुई मातृत्व की बात, लेकिन अध्याय का शीर्षक है अलौकिक दाम्पत्य, इस पर भी थोड़ी बात करते हैं।
हाँ, ये अलौकिक दाम्पत्य क्या है? ये सामान्य पति पत्नी के रिश्ते से कैसे अलग था?
देखिए, पुस्तक इसे बहुत स्पष्ट करती है। वंदनीय माता जी और गुरुदेव, जिन्हें पुस्तक में आराध्य कहा गया है, उनका संबंध एक सामान्य सांसारिक रिश्ता नहीं था, ये एक दिव्य साझेदारी थी।
दिव्य साझेदारी मतलब?
मतलब ये कि ये स्थूल लौकिक मिलन से कहीं ऊपर था, इसे परम पुरुष और माता प्रकृति या शिव और शक्ति के मिलन जैसा बताया गया है।
अच्छा,
तो उनका साथ बैठना, बातें करना, वो सब भी अलग होता होगा।
जी हाँ, पुस्तक के अनुसार उनका साथ बैठना भी अक्सर ईश्वर चिंतन, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा या लोक कल्याण के कार्यों पर विचार विमर्श के लिए होता था।
ये वो समय था जब गुरुदेव की गहन साधना चल रही थी, है ना, और अखंड ज्योति पत्रिका भी शुरू हो चुकी थी।
बिल्कुल, अखंड ज्योति का प्रकाशन शुरू हो चुका था और धीरे धीरे अखंड ज्योति परिवार बढ़ रहा था।
तो इस बढ़ते हुए आध्यात्मिक परिवार को संभालने के लिए एक मातृशक्ति की जरूरत थी।
हाँ, और वो मातृशक्ति केवल जन्म देने वाली माँ न हो, बल्कि श्रेष्ठ संस्कार देने वाली, प्राण सिंचन करने वाली माँ हो। वंदनीय माता जी ने यही भूमिका निभाई। वो सिर्फ गुरुदेव की पत्नी नहीं, बल्कि उस पूरे आंदोलन की माँ बनी।
तो क्या इस भूमिका के लिए उन्होंने स्वयं भी कोई विशेष साधना की? जी हाँ, पुस्तक में इसका उल्लेख है, उन्होंने स्वयं भी कठोर साधनाएं की। इसकी शुरुआत आंवलखेड़ा में गुरुदेव की तपोस्थली से ही हुई। उन्हें अपने आराध्य के पास रहकर कई गुप्त मंत्रों और योग की प्रक्रियाओं का ज्ञान मिला।
उनका अपना आध्यात्मिक विकास भी साथ साथ चल रहा था।
बिल्कुल, पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा भी चल रही थी।
और फिर उन्हें आंवलखेड़ा से मथुरा क्यों आना पड़ा?
हाँ, वो इसलिए कि जैसे जैसे अखंड ज्योति का काम बढ़ा, लोग जुड़ने लगे, जिज्ञासु आने लगे।
तो जगह कम पड़ने लगी होगी।
जी, आंवलखेड़ा का स्थान अपर्याप्त हो गया, तो इस बढ़ते काम को ठीक से चलाने के लिए उन्हें मथुरा में घिया मंडी वाले आवास में आना पड़ा। ये उनके जीवन का एक नया अध्याय था।
तो अगर हम संक्षेप में देखें, इस अध्याय से हमें वंदनीय माताजी के सहज दिव्य मातृत्व की झलक मिलती है।
हाँ, उनके और गुरुदेव के बीच के उस अनूठे अलौकिक दाम्पत्य की प्रकृति समझ आती है।
और गायत्री परिवार जैसे विशाल संगठन की नींव में उनकी क्या भूमिका थी, इसका भी अंदाजा लगता है।
बिल्कुल सही। और ये पूरा प्रसंग सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारे व्यक्तिगत रिश्ते भी एक बड़े उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य का हिस्सा बन सकते हैं।
और मातृत्व का रूप कितना विशाल हो सकता है, सिर्फ अपनी संतान तक सीमित नहीं बल्कि पूरे समाज को, एक आंदोलन को दिशा देना।
सही कहा, वंदनीय माताजी का जीवन यही दिखाता है।
तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं।
जी,
आज के समय में जहां रिश्ते अक्सर बहुत व्यक्तिगत हो जाते हैं, क्या हम अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में इस तरह की दिव्यता, निस्वार्थ सेवा और एक बड़े उद्देश्य की भावना को फिर से खोज सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।